शांति। अपनी 20th एन्युअल स्पार्क मीटिंग का आज दूसरा डे है, सेकंड डे है, डे ऑफ लिबरेशन, और उसके शाम के सत्र का आखिरी सेशन जो अभी चल रहा है लोकल चैप्टर प्रेजेंटेशन का। हमारे यहाँ तीन नाम आए हैं, तीन लोकल चैप्टर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। एक है जलगांव, दूसरा है मुंबई और तीसरा भुवनेश्वर। तो सबसे पहले मैं जलगांव की प्रतिभा बहन को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ आकर अपना प्रेजेंटेशन दे।
ओम शांति। 95 से जब से स्पार्क की शुरुआत हुई तब से जलगांव में लोकल चैप्टर शुरू है। तो जलगांव में अलग अलग प्रोजेक्ट पर अभी तक काम हुआ है, जैसे शुरू में संकल्प शक्ति ग्रुप था, उसके बाद अशरीरी स्थिति, फरिश्ता स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, ज्वालामुखी स्थिति, इन सभी प्रोजेक्ट पर अभी तक काम हुआ है। और सबसे ज्यादा हीलिंग का जो प्रोजेक्ट था इस पर ज्यादा सबसे ज्यादा काम हुआ है और अभी तक उसका कार्य भी चल रहा है। तो पिछले साल हमने संगम युग पर बचत की स्कीम और अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान, ये दो प्रोजेक्ट जलगांव में लिए थे। तो मेरे पास संगम युग पर बचत की स्कीम, इसका प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तो इसमें जलगांव में हमने 25 सदस्य इसमें काम कर रहे थे। तो इसमें अलग अलग यहाँ से जाने के बाद 1 फरवरी से दिसंबर तक ये संगम युग पर बचत की स्कीम, इस पर काम चला। तो सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया गया, उसके बाद इस पर मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ कि हर मंथ में पहले और तीसरे रविवार को हमको मीटिंग भी करना है, उसमें भट्टी भी करना है, वर्कशॉप भी करना है, और वैसे उस अनुसार ये प्रोग्राम चलते रहे। तो जो भट्टियां चली वो 4 घंटे के हम योग करते थे, पहला संडे और तीसरा संडे। तो उसमें अलग अलग क्रिएटिव योग करते थे, तो उसमें आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, और जैसे दिनचर्या बनाई थी प्रोजेक्ट प्रपोजल में उस दिनचर्या का भी अनुभव करते थे, और अलग अलग तरीके से अशारीरिक स्थिति का अनुभव कराते थे। इसके बाद जैसे हैदराबाद में मीटिंग हुई तो उसमें नंदूरा सेंटर जो अकोला के कनेक्शन में है, वो बहन जी ने हमको निमंत्रण दिया और उन्होंने भी संगम युग पर बचत की स्कीम ये प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। तो वहां पर हम लोग गए तो वहां भी हमने 4 घंटे की भट्टी रख के स्पार्क का उद्देश्य समझाया। तो स्पार्क का उद्देश्य बीके वैष्णवी ने और बीके प्रतिभा ने अलग अलग तरीके से क्रिएटिव योग कराया। फिर उसके बाद लास्ट में रवि भाई जी ने परमात्मा के आह्वान करके सभी को अनुभूति कराई कि परमात्मा शिव बाबा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे अनुभूतियों का योग कराया। और वहां पर भी 25 सदस्यों का संगम युग पर बचत की स्कीम, इस पर काम चला। इसके बाद चोपड़ा सेंटर जो जलगांव के कनेक्शन में है, वहां पर भी ऐसे ही योग अनुभूति के लिए उन्होंने बुलाया था। तो वहां पर भी करीब 75 सदस्य थे और उस अनुभूति में उन्होंने भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, और उसके बाद अभी वहां पर भी लोकल चैप्टर खुल रहा है और नंदूरा सेंटर में भी लोकल चैप्टर खुलने जा रहा है। तो 19 साल में स्पार्क में आने के बाद हम अलग अलग तरीके से विधिवत योग का प्रयोग करना इसमें सीखे और कई अनुभूतियां भी बाबा ने कराई। उसके बाद अलग अलग अनुभूतियां भी होती रही, प्रयोग भी करते रहे शारीरिक बीमारियों पर। तो इसमें जलगांव में 60 पेशेंट पे प्रयोग हुए, फिर सुख शांति भवन अहमदाबाद में भी 45 पेशेंट पर प्रयोग हुए, और ऐसे अलग अलग अनुभूतियां और अलग अलग सरकमटांस आते थे। तो उसमें प्रकृति पर भी प्रयोग होते थे। तो सेंटर में जैसे बारिश नहीं होती थी तो 7 दिन हम उसके लिए भट्टी रखते थे, तो वो 7 दिन में बारिश आती थी। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हुआ। फिर ऐसे अनुभव जब हमने अंबिका दीदी जी को सुनाए इसमें कुछ इविल सोल के अनुभव थे, बहुत ऐसे डरावने अनुभव थे, उस पर भी योग के प्रयोग से सक्सेस मिली। और ऐसी शारीरिक बीमारियां भी थी जो डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रही थी, तो वो भी योग के प्रयोग से ठीक हो गए। तो उसके बाद अंबिका दीदी जी ने भी हमको बेंगलोर आने का निमंत्रण दिया, तो हम लोग 26 नवंबर को वहां गए बेंगलोर सेंटर। तो बेंगलोर सेंटर में हम लोग 40 दिन रहे, तो उसमें अलग अलग सेंटर पर दीदी जी ने हमारे प्रोग्राम बनाए। तो उस प्रोग्राम में ये था योग का प्रयोग सिखाना, योग अनुभूति कराना, स्पार्क का उद्देश्य बताना तथा लोकल चैप्टर का प्रारंभ करना और सेंटर को निर्विघ्न बनाना और सेंटर का वाइब्रेशन पावरफुल बनाना। तो ऐसे वहां पर प्रयोग चलते थे। तो उसमें रवि भाई और प्रतिभा बे, यानी कि मैं, हम दोनों वहां पर एक डेढ़ महीना रहे। तो उसमें करीब 50 सेंटर में ऐसे प्रोग्राम चले, तो उसमें करीब 200 लोग स्पार्क के मेंबर बनने के लिए तैयार हो गए और 50 लोग तो उन्होंने मेंबरशिप का फॉर्म भी भर दिया। और फिर वहां पर ऐसे 4 घंटे का 5 घंटे का प्रोग्राम चलता था, तो वहां पर सभी क्लास के लोग इकट्ठे होते थे, अलग अलग सेंटर पर प्रोग्राम चलते थे। और उसमें स्पार्क का उद्देश्य और कुछ अनुभूतियां सुनाना, उसके बाद उनको योग कराना और फिर उनके जो प्रश्न होते थे उनका जवाब देना, उनको सेटिस्फेक्शन कराना, ये होता था। तो ऐसे सेवाएं बेंगलोर में चली। फिर बेंगलोर में जहां हम रहते थे अंबिका दीदी के पास वरदानी भवन में, तो वहां के सेंटर का वाइब्रेशन पावरफुल बनाने के लिए दीदी ने बोला था। तो 40 दिन ऐसे करते थे, सुबह और शाम, सुबह 6:30 से 7:30 एक घंटा क्रिएटिव योग कराना होता था। और उसमें भिन्न भिन्न तरीके से ऐसे 40 दिन क्रिएटिव योग होता था। तो उसमें सेंटर का वाइब्रेशन पावरफुल बनाना और सेंटर के कनेक्शन में जितने सेंटर है अंबिका दीदी जी के कनेक्शन में, उन सभी सेंटर को चार्ज करना और सेंटर में सेंटर को निर्विघ्न बनाना, ये सेवाएं चली। फिर शाम के समय जो बीके स्टूडेंट थे तो उनको हीलिंग के लिए उनको गाइडेंस चाहिए था और कुछ प्रयोग चाहिए था। तो ऐसे 45 पेशेंट माना बीके जिनको बीमारियां थी अलग अलग, तो उनको विधि पूर्वक बताया गया कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी शक्ति बाबा से लेना है और कैसे योग का प्रयोग करना है। तो सभी शाम को रेगुलर आते थे और संगठन में उनको हीलिंग का योग कराया जाता था कमेंट्री के द्वारा। और अमृत वेला से रात तक कौन सी विधि से कैसे अपनी बीमारी को ठीक करना है, कैसे संकल्प रखना है, कैसे खान पान रखना है, कैसे दिनचर्या रखनी है और कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, ये सारा उनको बताया जाता था। तो उसमें कई लोग ऐसे भी थे जो शरीर की बीमारी पर प्रयोग करने के लिए बैठे थे, कुछ लोग अपना योग पावरफुल करने के लिए बैठे थे, कुछ अपने संबंधों में सुधार करने के लिए बैठे हुए थे। तो बहुत से लोगों को उसमें सक्सेस मिली, कई लोगों को 100% मिली, कई लोगों को 50% मिली। जैसे जिन्होंने विधि पूर्वक किया वैसे उनका रिजल्ट हुआ। तो ऐसे 1.5 मास हम अंबिका दीदी के पास रहे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको पालना भी दी और आगे बढ़ाया। और ऐसे बार बार सेवा देने का उन्होंने भी बोला है। और अभी हम दीदी जी कई प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं फाइनल पेपर का। और अभी जलगांव के भी सदस्य आए, कुछ बेंगलोर के भी आए हुए हैं, तो 50 के करीब मेंबर बने हुए हैं, ये उनका रिजल्ट है। और अभी लोकल चैप्टर भी वहां पर खुल रहे हैं। तो उसमें वरदानी भवन में दीदी ने जहां जहां हमारे क्लासेस हुए तो उन लोगों को वरदानी भवन बुलाया। उसमें पहले तो एक बार सभी टीचर बहनों की मीटिंग रखी थी, तो उनमें उनको संगम युग पर बचत की स्कीम, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल समझाया गया। तो सभी बहनें भी उस पर अभी वो काम कर रही है। और फिर उसके बाद जो स्पार्क के मेंबर बने उन सभी को वरदानी भवन में बुलाया था। उसमें ये तय हुआ कि और सभी को मंथ में दो बार मिलना है आपस में, और अपने सेंटर पर 15 दिन में एक बार और 15 दिन में एक बार अंबिका दीदी के सेंटर पे सभी लोग आएंगे और वहां पर उनके वर्कशॉप चलेंगे, भट्टियां चलेंगी और ऐसे स्व उन्नति का प्रोग्राम ऐसे बढ़ते गया और ऐसे सेवाएं हुई। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा बेन जी। अब इसके बाद दूसरा है मुंबई से कांतिलाल भाई।
ओम शांति। बॉम्बे आप जानते हैं जैसे माया नगरी है, वैसे बॉम्बे विज्ञान की भी नगरी है। TIFR, BRC, टाटा कैंसर, CRI, NIRH जितने भी वर्ल्ड रिन्यूड इंस्टीट्यूशन है उसमें उसकी हर एक की ब्रांच बॉम्बे में है। तो स्पार्क में तो हम लोग बाबा के संदर्भ में रिसर्च करते ही है, लेकिन और एक सेवा हमें स्पार्क के जरिए करना है, वो ये है कि बाहर के वैज्ञानिकों को बाबा के संपर्क में लाना। तो स्पार्क के साथ बाबा के संपर्क में बाहर के वैज्ञानिकों को लाने की सेवा में एक प्रोजेक्ट चालू है। जब भी हम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाते थे तो वो पहले संस्था का परिचय देने के बाद पूछते थे कि आप क्या काम करते हो। तो हम कहते हम स्पार्क में काम कर रहे, 20 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन छोटी कठिनाई आ जाती थी, एक ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी, आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं या आपने कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, इसके जरिए मापते हैं। तो उसके लिए थोड़ा यज्ञ को हेल्प करने की कोशिश हमने इस साल की है। एक मौका मिला था दिल्ली में, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जिसमें 46 कंट्रीज के साइंटिस्ट आए हुए थे, 46 कंट्रीज के साइंटिस्ट और करीबन 20,000 तक PhD गाइड उसमें आए थे और 2,00,000 लोगों ने उसमें विजिट किया है। तो ये मौका हम क्यों छोड़ेंगे। तो हमने इस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जो स्पार्क के नाम पर था। माना हमारा उद्देश्य ये था कि ईयर आफ्टर जब भी कोई भी बड़े साइंटिस्ट अगर स्पार्क को नेट पर क्लिक करेंगे तो स्पार्क के नाम पे अपने इंटरनेशनल पेपर्स कुछ ना कुछ मिलेंगे। तो उसमें हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ली इंडेक्स। ली इंडेक्स के अभी तक करीबन 9 इंटरनेशनल पेपर है, उसमें से एक अपने बाबा का है। और ली इंडेक्स इस रिसर्च पेपर में हमने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस अकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड हॉल नंबर 13 जो स्पार्क का एड्रेस वही डाला हुआ है। तो ऑफिशियली अभी वो बाबा के नाम का एक इंटरनेशनल रिसर्च पेपर के रूप में हो गया। नेक्स्ट, यह पोस्टर है वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का। यह इतने 46 कंट्री जो आए थे उनके फ्लैग लगे हुए हैं। ये अपना रिसर्च पेपर है और ये वहां के साइंटिस्ट लोग हैं जो विजिट करने के लिए आए हुए थे। राइट साइड में मैं हूं। ये तो एक पहला मौका हुआ। उसके बाद दूसरा मौका हमें मिल गया। इट वॉज 102nd इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी इंडियन साइंस कांग्रेस। इंडियन साइंस कांग्रेस ये हर साल में होती है, जनवरी 3 से जनवरी 7 तक। इंडियन साइंस कांग्रेस की विशेषता ये है कि उसके उद्घाटन के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, इसके क्लोजिंग के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाते हैं, और जिस स्टेट में इंडियन साइंस कांग्रेस होती है उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसके होस्ट होते हैं। तो सारे मिनिस्टर्स उस स्टेट के उसमें होस्ट के रूप में काम करते हैं। तो इस साल जो 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस है ये हुई थी मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो मोदी साहब जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उसके इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे। एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने एक सेशन चेयर किया, प्रेसिडेंट क्लोजिंग के लिए आए हुए थे, महाराष्ट्र के 30 मिनिस्टर उसमें आए हुए थे और करीबन 30 मिनिस्टर आए हुए थे, 18,000 PhD गाइड आए हुए थे। ये तो इंडियन साइंस कांग्रेस की खबर हो गई। खुशी की बात यह है कि इस बार हमने इंडियन साइंस कांग्रेस में अपना बाबा का स्टॉल लगाया हुआ था, अपना स्टॉल। ये इंडियन साइंस कांग्रेस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। आगे के पोस्टर में हम देखेंगे उस स्टॉल में हमने उन्होंने अपने खबर भी बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई थी। इस बार की पीछे की स्लाइड आप देखेंगे। इस बार की साइंस कांग्रेस की विशेषता ये थी उसमें 40 नोबेल लॉरेट्स आए हुए थे। माना ऐसा कभी हुआ नहीं कि नोबेल लॉरेट्स इंडियन साइंस कांग्रेस में इतनी संख्या में आए हुए, बल्कि इस बार 40 आए हुए। नेक्स्ट, ये जो दिख रहे हैं ये जिनको ज्ञान दिया जा रहा है, ये वाइस चांसलर ऑफ गोवा यूनिवर्सिटी। बाबा का जो स्टॉल लगा हुआ था, बाबा का स्टॉल 12 वाइस चांसलर्स ने विजिट किया हुआ है और उनमें से एक भी ऑन द स्पॉट उन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी का स्टॉल है एंड दे केम टू विजिट इट एंड दे गिव द ओपिनियन ऑल्सो कि दिस इज द न्यू थीम विच हैज टू बी इनकल्केटेड इन द इंडियन साइंस कांग्रेस. इसके बाद हम लोग इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी मिले, उन्होंने अभी अगले कांग्रेस में स्पिरिचुअल साइंस ये सब्जेक्ट का स्टॉल ऑफिशियली होने की कोशिश हमने जारी की है. उसमें अपने पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी अपने साथ में है. ये खबर अभी तक डिस्क्लोज नहीं की थी, कोशिश जारी है. नेक्स्ट, ये है इंडियन साइंस कांग्रेस की बुलेटिन. उस बुलेटिन में उन्होंने कुछ लाइनें अपने ब्रह्मा कुमारी के बारे में लिखी है. और इंडियन साइंस कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है लखनऊ के वाइस चांसलर, उनके टीवी के इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि इस बार की साइंस कांग्रेस की विशेषता यह है कि एक एनजीओ जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी हमारे साथ में काम में थी, हमारे साथ में इन्वॉल्व थे 8 डेज के लिए. नेक्स्ट, इंडियन साइंस कांग्रेस में हमने स्टॉल लगाया, उसमें बहुत सारी अपनी मशीनरी लगी हुई थी. तो आजू बाजू के कई प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जैसे कीर्ति कॉलेज है, उन्होंने हमको अप्रोच किया कि ये जो आपका है एग्जीबिशन ये हमारे कॉलेज में भी लगाया जाए. तो कीर्ति कॉलेज जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक जाना माना पुराना कॉलेज है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में जो रन करता है, 50 साल जिनको हो गए हैं, उनके यहाँ पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी हमने ये स्टॉल लगाया हुआ था. उसके इनॉग्रेशन के लिए वाइस चांसलर आए हुए थे, तो उन्होंने हमें अप्रिसिएशन लेटर सर्टिफिकेट दिया हुआ था. नेक्स्ट, ये इंडियन साइंस कांग्रेस की कुछ क्लिप्स है, आप देखेंगे इस फोटो में. जस्ट मिनट, इज अ ब्रदर पॉल नूस ऑफ यूएसए, इनको बायोटेक्नोलॉजी का नोबेल प्राइज मिला हुआ है. ये अप्रिसिएशन कर रहे हैं और अपना स्टॉल, इन्होंने स्टॉल में 25 मिनट दिए, 25 मिनट में इन्होंने सारा एग्जीबिशन देखा हुआ था और इन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया हुआ. तो नोबेल लॉरेट्स ने अपने स्टॉल का विजिट किया. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैश होल्ड द नोबेल लॉरेट्स. इफ यू वांट टू कॉल एनी ऑफ द नोबेल लॉरेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ऑफकोर्स विद द एरोप्लेन फेयर यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है, उनके पीछे बहुत सारे टेररिज्म होती है तो उनके सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है. इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू रीच द नोबेल लॉरेट्स एंड वेरी डिफिकल्ट टू कैच होल्ड देम. एंड नॉर्मली इट इज सीन दैट नोबेल लॉरेट्स दे डोंट गिव टाइमिंग फॉर द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट देन मिस्टर पॉल ही गेव 25 मिनट्स विद अस एंड देन अल्टीमेटली अप्रिशिएटेड दैट समथिंग इज देयर विच हैज टू बी स्टडीड इन डिटेल. तो ये नोबेल लॉरेट्स यूएसए के थे. नेक्स्ट, मोदी साहब आए थे इनॉग्रेशन के लिए. खुशी की बात यह है कि इंडियन साइंस कांग्रेस में इनका जो इनॉग्रेशन हुआ, इट वॉज इन द वन ऑफ द बिगेस्ट हॉल विच वॉज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली एंड इट इज द लार्जेस्ट हॉल इन द वर्ल्ड, लाइक अपने डायमंड हॉल के जैसा लार्जेस्ट हॉल था. और उसमें ब्रह्मा कुमारी बहने बैठी हुई थी, फर्स्ट सोफे पे बैठी हुई थी 6 बहने, और प्रेसिडेंट मोदी साहब ने और एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने उन्होंने देखा एंड दे शोड दैट, मतलब उन्होंने परिचय दिखाया, जो एक सिग्नल देते गेस्चर उन्होंने दिखाया था. तो ये मोदी साहब जहां आए थे इनॉग्रेशन का, तभी का फोटो है. नेक्स्ट, अब्दुल कलाम जी भी आए हुए थे, इनके स्पीच में भी अपनी बहने उनको बैठी हुई थी, करीबन 6 to 7 बहने फर्स्ट सोफे पर बैठी हुई थी, उन्होंने भी अप्रिसिएशन दिखाया. नेक्स्ट, ये अपने स्टॉल का फोटो है, अपने जो पोस्टर्स और मशीनरी लगी हुई थी. नेक्स्ट, ये अपने स्टॉल में वही नोबेल लॉरेट्स, बाजू में अलका दी दीजिए जो बॉम्बे स्पार्क के कोऑर्डिनेटर है. नेक्स्ट, और श्रीकांत भाई भी दिखाए, ये मीरा दीदी हैं जिन्होंने इस स्टॉल का अपने उद्घाटन किया था. नेक्स्ट, ये जो है मेन फंक्शन हॉल, ये अपने बाबा की टीम है. करीबन 18,000 पीएचडी गाइड आए हुए थे और विशेषता ये है कि जब सब झुंड में घूमते थे तो सारों की नजर अपने तरफ जाती थी, अरे इस बार ब्रह्मा कुमारी आई है, अरे इस बार ब्रह्मा कुमारी भी आई है, ब्रह्मा कुमारी का भी स्टॉल है. मतलब बिना बोले सेवा हो रही थी, अपने तो फरिश्ते घूमते रहते थे. कैंपस तो काफी बड़ा है, शांतिवन जितना बड़ा कैंपस है बॉम्बे यूनिवर्सिटी का. तो ये मेन स्टॉल के बाहर का एग्जीबिशन, ये है स्टॉल के अंदर मैन स्टूडेंट को समझा रही है. ये सारे स्टूडेंट जो पीएचडी स्कॉलर्स है, कई पीएचडी स्कॉलर्स ने अपना स्टॉल विजिट किया था. नेक्स्ट, ये भी पीएचडी स्कॉलर, ये भी एक वाइस चांसलर सर है जो टाई लगाए हुए हैं, इन्होंने भी अप्रिशिएट किया था. नेक्स्ट डाउन, कुछ मुस्लिम्स और कुछ क्रिश्चियंस ने अपने स्टॉल के विजिट किया था। ये एक नन है जिसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक स्नैप अपने लगाया हुआ है। नेक्स्ट, और अवर स्टॉल वॉज कंटिन्यू क्राउडेड, मॉर्निंग 8 o'clock टिल 7 o'clock इन द इवनिंग इट वॉज टोटली क्राउडेड। तो ये छोटे क्राउड का स्नैप है। मोस्ट ऑफ देम यू कैन सी दे सारे ये जो है वो PhD स्कॉलर्स है। और आगे का भी फंक्शन ऐसा है कि बॉम्बे में भी हम लोग एक स्पार्क की गैदरिंग करने जा रहे हैं। करीबन 6-7 डायरेक्टर्स को हमने कॉन्टेक्ट किया हुआ है। दे ऑल आर एग्रीइंग टू हैव सम टाइप ऑफ गेट टूगेदर विथ अस। सम ऑफ देम दे आर एग्रीड टू हैव MOU ऑल्सो विथ अस। अभी मैं प्रखर भाई को बुलाऊंगा, वो कुछ और एक अनुभव बताएंगे। प्रखर भाई।
ओम शांति। शरीर का नाम प्रखर भाई है। बॉम्बे लोकल चैप्टर के साथ हमने भी रायपुर के तरफ से मतलब कुछ प्रयोग किए, उसमें से एक बहन का प्रयोग बताना चाहूंगा जो उन्होंने मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो नर्स है, तो उनकी सैलरी अटकी हुई थी ऑलमोस्ट 62,000 रुपीज, जो कि मतलब उन्हें मिल नहीं रही थी। और जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मतलब उसके लिए रिश्वत मांगी थी, लेकिन बाकी सभी को देना पड़ा। लेकिन बहन ने एक छोटा सा प्रयोग किया, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ स्वमान लेकर। तो प्रयोग कुछ इस तरह का था कि अमृत वेले के बाद वो 5 मिनट एक्स्ट्रा शकाश सेवा करते थे। 21 डेज, 21 दिन का ये प्रयोग था उनका, और वो सात्मा को विजुअलाइज करके सकाश देते थे। उससे रिजल्ट ये रहा कि बाकी जो नर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, उनको रिश्वत देनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसने रिश्वत मांगी थी, उसने फोन करके कहा कि जो भी ब्राह्मण मतलब कविता नाम है उनका, तो उनसे नहीं लिया जाएगा करके, तो उसका ये रिजल्ट रहा था। ओम शांति।
बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन बॉम्बे के कांतिलाल भाई और उनके साथी भाई बहनों ने हमारे। अब इसके साथ भुवनेश्वर से।
ओम शांति। हम स्पार्क से प्रेरणा लेकर के हर महीना के फर्स्ट संडे हम हमारे सेंटर में सभी भाई बहन इकट्ठे होते हैं, और खास तौर पर जो हमारी पहले से ही जो प्रोजेक्ट चल रही थी सतयुगी भविष्य राज्य व्यवस्था, तो उसके अंतर्गत ही स्वराज्य अधिकारी और संतुष्ट मणि की प्रोजेक्ट के ऊपर जो चार्ट और कमेंट्रीज आदि आ रही थी उसकी प्रयोग हम लोग कर रहे थे। और खास संतुष्टता के ऊपर जो बाबा की महावाक्य है तो उसकी संकलन भी भाई बहने किए हैं। और निर्विघ्नता के ऊपर खास हर रोज जो सेंटर और उसके कनेक्शन में हमारे सब सेंटर्स पाठशाला है, वहाँ सवेरे 7 बजे वहाँ के माना तय किया गया उसी अनुसार 15 मिनट उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। और 18 जनवरी 2013 में जो बाप दादा की महावाक्य में बताए थे कि बाप दादा की शुभ आशा है कि हर रोज अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मन वचन कर्म में कार्य करते हो उसको उसमें चेक करो, बाप का कहना और मेरा करना समान रहा, रोज की मुरली ही बाप का कहना है। तो ये रोज की मुरली के ऊपर अटेंशन देने के लिए रोज मुरली में बाबा क्या कहा उस अनुसार रोज की मुरली पर प्रकाश डाला जाता है। और मुरली पर अटेंशन देने के लिए सेवा केंद्र में हर रोज मुरली के बाद नेक्स्ट डे मुरली के बाद 15 मिनट की परीक्षा होती है, 15 मार्क्स या 20 मार्क्स की परीक्षा डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम उसकी होती है। और फर्स्ट संडे भी जो रेगुलर साकार या व्यक्तवाणी या लेटेस्ट मुरली के ऊपर परीक्षा होता रहता है। और खास सेवा के लिए जो भाई बहनों की योग की रुचि तथा योग में भिन्न भिन्न अनुभूति के आधार से सेवा के कार्यक्रम भी बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर एक इंजीनियरिंग कॉलेज एक साइंटिस्ट की प्रोग्राम होस्ट किया, और वो टॉपिक था, थीम था मेथोडोलॉजी ऑफ मेटा कॉग्निटिव साइंस। तो हमें भी इनवाइट किए, तो हम तो उसके ऊपर क्या बोलना है, हम श्रीकांत भाई से बातचीत किया, तो श्रीकांत भाई जी ना बोले कि डीआरडीओ में इसके ऊपर काम हो रहा है, तो सुशील चंद्र भाई जी इस कार्यक्रम में हमें रिप्रेजेंट किए और उनकी उपस्थिति में एक जो वो कॉन्फ्रेंस था ना, उसमें 300 जैसे साइंटिस्ट सारे देश में से आए हुए थे और उनकी उपस्थिति में एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप को भी भाई जी ने एड्रेस किए थे ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, और भाई जी की उपस्थिति में वहाँ के जो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की लगन और इंजीनियरिंग कॉलेजेस तथा रिसर्च बॉडीज है उनको देख के सुशील भाई की जो संकल्प और श्रीकांत भाई की प्रेरणा के अनुसार एक हम स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए, SIR कॉन्फ्रेंस जो लास्ट अगस्त में रही, उसकी थीम था स्पेक्ट्रम ऑफ स्पिरिचुअलिटी ए होलिस्टिक अप्रोच इन रिसर्च, जो वहाँ का यूनिवर्सिटी ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उसी यूनिवर्सिटी में रहा, और जिसके दौरान हम भुवनेश्वर तथा ओडिशा की सब तरफ से जितनी भी रिसर्च यूनिट्स है, रिसर्च बॉडीज है, वहाँ कांटेक्ट किए थे, तो सारे स्टेट में से 500 से अधिक भाई बहने जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, लेक्चरर्स थे, तो सभी वहाँ उपस्थित हुए थे। उसी प्रोग्राम के अंतर्गत ये था कि सारा दिन पूरा 500 से अधिक भाई बहन जो वन डे प्रोग्राम था पूरा बैठे रहे, और शाम को भी उसी प्रोग्राम का जो फॉलो प्रोग्राम था ऑन द थीम ऑफ दिस ईयर जो रिसीविंग गॉड्स पावर एंड फॉर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए खास अदिति बहन दिल्ली से गई हुई थी और डेविड भाई ज्ञान सरोवर से, तो उनका जो म्यूजिक कंसर्ट था वो भी बहुत प्रभावशाली रहा। तो इंस्पाइट ऑफ जो भी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स था, फिर भी इतनी भाई बहनों की, खास बाहर की साइंटिस्ट लोगों का इकट्ठा होना, ये बहुत मना सबको जैसे बहुत प्रेरणा दिया। और इसमें खास हमारा रामाराव भाई एंड ग्रुप, हमें और भी कहीं कहीं से भी सब भाई बहने हमको सकास दे रहे थे, तो उससे इसकी सफलता प्राप्त हुआ। और जिसके बाद ही यहाँ हमारा जो 8th SAR कॉन्फ्रेंस था, उसमें से ही 11 भाई बहन यहाँ भी रिप्रेजेंट किए थे। और उसके सिवाय जो कल्पकम की इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, उसमें वहाँ का एक साइंटिस्ट जो कांटेक्ट में आके भुवनेश्वर में पहुँच के, वो खास एक ये लास्ट मंथ में आर्ट एंड साइंस ऑफ लव के ऊपर प्रकाश डाले। और इसी के साथ सभी भाई बहनों का उमंग ऐसे बढ़ गया है कि इस साल जो कि हमारे सेंटर की सिल्वर जुबली ईयर है, 25th ईयर है, तो सभी विंग्स के लिए सेवा के लिए सबकी प्रेरणा है। तो हम अभी ये प्रेरणा लेके जा रहे हैं खास मीटिंग से, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने के साथ साथ ये जो सारी विंग्स में भी विंग्स की सेवा भी कैसे रहे, ताकि भाई बहने इसके लिए भी तैयार हो गए हैं, वो प्रोग्राम की सफलता भी संभव हो पाएगी। ओम शांति।
हम सभी के सामने ये तो क्लियर हो रहा है कि चाहे स्टूडेंट की उन्नति के लिए स्पार्क काम कर रहा हो या अज्ञानियों की सेवा भी चल रही है सर कॉन्फ्रेंस आदि के द्वारा, तो कोल्हापुर में भी पिछले 3 सालों से हम स्पार्क का अभ्यास कर रहे हैं। और अभी तो कोल्हापुर जो क्लास है उसमें से 15 स्पार्क के मेंबर है। और जैसे बाबा तो कहते हैं कि हमें मायाजीत बनना है, तो मतलब स्पार्क में जब हम आते हैं तब हमें पता पड़ता है कि मायाजीत ये शब्द भी बहुत गहरा है, गहन है, और उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं कि किन किन बातों पर हमें विजय प्राप्त करनी है, जैसे 5 विकार है। तो हमने 1 मास के लिए ये ऐसा अभ्यास किया था कि क्रोध मुक्त हमें बनना है, तो क्रोध मुक्त, लेकिन जैसे हम स्टूडेंट को अगर ऐसे ही चार्ट देते हैं कि हमें क्रोध पे ध्यान रखना है, शांत रहना है वगैरह, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल रेगुलर का हो जाता है। तो इसलिए हमने एक गेम के रूप में उसे बनाया, क्रिकेट गेम के रूप में, और उस चार्ट को सभी को दिया, तो जैसे क्रिकेट में दो ग्रुप होते हैं ना, दो ग्रुप के बीच में वो होता है, तो यहाँ भी दो ग्रुप है, एक है माया और उसके अपोजिशन में बाबा के हम बच्चे हैं, जिनको टाइटल मिला है कि हम सब मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसका उद्देश्य है कि हमें संपूर्णता क्रोध मुक्त बनना है, और इसे 6 स्तर पर इसकी चेकिंग की गई। जैसे कोई भी परिवर्तन हमें करना है तो मतलब संस्कार परिवर्तन की बात जब आती है तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तक हम जाते हैं, तो 6 बातें जैसे कि कर्म है, फिर वाणी है, दृष्टि, मनसा, वृत्ति और स्वप्न। बाबा कहते हैं ना, स्वप्न में भी वो ख्यालात ना आए, वो विचार ना चले, इस प्रकार से। तो उसके कुछ नियम हमने बनाए, इस गेम के कुछ नियम बनाए कि जैसे पहला जो है कि क्रोध अगर कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रकट होगा तो इस गेम से आउट होगा। बाबा कहते ना विकर्म, जैसे मन में कुछ ख्याल चल रहा है लेकिन हमें कर्म इंद्रियों से वो नहीं प्रकट करना है, तो उस पे हमें कंट्रोल करना है। तो उस हिसाब से आउट क्या है, नो रन क्या है, फर्स्ट रन, फिर दूसरा रन, फिर फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, ये बातें इसमें आई है। तो हमने ऐसे बनाया कि क्रोध कर्म इंद्रियों के द्वारा अगर किसी ने प्रकट किया तो वो आउट हो गया। फिर दूसरा रूल ये बनाया कि अगर वो वाणी के द्वारा क्रोध को प्रकट करता है, इसे तो हम सभी भली बातें जानते हैं, तो वो नो रन है, उसे रन नहीं मिलेगा उस दिन के लिए। फिर तीसरा हमने बनाया कि क्रोध कर्म में भी नहीं है, वाणी में भी नहीं है, लेकिन दृष्टि द्वारा प्रकट हो रहा है। गुस्सा आया तो दृष्टि द्वारा वो प्रकट हो रहा है, तो फिर भी ठीक है, उसे हमने एक रन दे दिया है। वैसे तो करना नहीं है लेकिन चार्ट में मार्क्स भी तो मिलने चाहिए ना, तो इसलिए एक रन उसे दे दिया। फिर है कि क्रोध कर्म में नहीं, वाणी में भी नहीं और दृष्टि में भी नहीं है, लेकिन मन में चल रहा है, मन में गुस्सा है किसी के प्रति, तो फिर उसे दो रन दे दिए। फिर है कि क्रोध कर्म में, वाणी में, दृष्टि में और मनसा में भी नहीं है लेकिन वृत्ति है कहीं ना कहीं, तो फिर उसे 3 रन दे दिया। फिर है कर्म, वाणी, दृष्टि, मनसा और वृत्ति में भी नहीं है लेकिन स्वप्न में कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म रूप में संस्कार हमारा है, तो उसे 4 रन, क्योंकि परिवर्तन तो स्थूल से सूक्ष्म तक हमें करना है। और अगर क्रोध कर्म में, वाणी में, दृष्टि, मनसा, वृत्ति और स्वप्न में भी नहीं है तो वो 6 है। डाउन करो, तो उस प्रकार से ऐसे कुछ रूल्स उसके बनाए। फिर इसके आगे फिर ये किया कि ये 1 या 2 मास का टाइम हम निश्चित कर सकते हैं। हमने तो 1 मास का टाइम निश्चित किया था कि 1 मास में हमें अपना ये चार्ट चेक करना है, देखना है। तो एक दिन जो होता है हमारा वो एक बॉल है, बॉल आएगा फिर बैटिंग करेंगे ऐसा ना, तो एक दिन हमारा एक बॉल रहेगा और उसमें खिलाड़ियों को कम से कम 100 रन बनाने हैं पूरा, मतलब मास भर में टारगेट रखना है कि हमें इतने रन बनाने हैं करके। अगर कोई 60 रन बनाता है और फिर आउट होता है, मतलब कुछ दिन मेरा चार्ट अच्छा रहा लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्रोध कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रकट हो गया तो वो आउट हो गया। लेकिन आउट होने के बाद हमने फिर से उसे चांस दिया है कि भले आप आउट हो गए हो लेकिन 2-3 चांस रखे हैं कि फिर भी आप चार्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उस समय मार्क्स मतलब रन तो 0 हो गया क्योंकि आउट हो गए। फिर उसके बाद जो है नीचे का, ऐसे नहीं कि मेरा क्रोध पर अटेंशन है, क्रोध तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुरली या अमृत वेला इसमें कुछ अलबेलापन है और चार्ट क्रोध के ऊपर का जो चार्ट है उसमें हमारे मतलब पूरे रन हम बना रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं। ये तो उसके लिए बनाया, ये ऐसा नियम बनाया कि अमृत वेला, मुरली और नुमाशाम का योग जो ब्राह्मणों की दिनचर्या है, तो ये अनिवार्य है, ये कंपल्सरी करना ही है। और अगर किसी को 6 रन मिल जाए, स्वप्न में भी नहीं है भले किसी के, ऐसे भी कोई हो लेकिन वो दिनचर्या में एक्यूरेट नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, मुरली अमृत वेला कंपल्सरी है। और फिर उसके बाद ये जो चार्ट फिलअप करेंगे और ये पास होंगे तो उसके लिए कुछ नंबर्स भी निकाले। तो फर्स्ट नंबर है कि जो बिना आउट हुए ज्यादा से ज्यादा रन बनाता है उसे मैन ऑफ द मैच बताया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड है कि जो आउट हुआ लेकिन उसने ज्यादा रन बनाए, ज्यादा टेंशन रखा, आउट भले हुआ एक बारी या दो बारी लेकिन ज्यादा रन बनाए, तो वो सेकंड पे रहा। और थर्ड पे वो है कि जो जिसकी दिनचर्या एक्यूरेट है और साथ साथ शतक बनाने वाला है, ज्यादा रन बनाता है, तो वो थर्ड पे गए उससे कम थोड़ा सा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट चार्ट निकाल, तो इस प्रकार से ये इसका नियम वगैरह बनाया और एक मास का सभी ग्रुप के तरफ से अभ्यास हुआ। और ये चार्ट है, चेकिंग के पॉइंट भी है और डेट, जैसे कि कर्म, वाणी, दृष्टि, मनसा, वृत्ति, स्वप्न, और जो विजयी मतलब स्वप्न में भी नहीं है वो उसे विजयी बताया है। और फिर नीचे अमृत वेला, मुरली और नोमाशाम योग, ये तो कंपलसरी करना है, तो वो भी उसमें उस चार्ट में ऐड किया और उसका फिर टोटल बनाया। तो हाँ, तो ये चार्ट बनाया और उस तरीके से अभ्यास किया, तो कोल्हापुर में भी किया और साथ साथ कोल्हापुर से कनेक्टेड शिरोळ सेंटर है, उस सेंटर में भी हमने किया। तो शिरोळ सेंटर में किया तो सभी भाई बहनों ने इसमें हिस्सा लिया और रिजल्ट ये निकला कि ज्यादातर माताओं को मैन ऑफ द मैच मिला। मतलब ये गेम के रूप में इसलिए रखा क्योंकि पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ नवीनता हर एक कोई चाहता है, ऐसे ही योग में बैठे रहे, इस पर अटेंशन रखना है, उस पर अटेंशन रखना है, तो कईयों को फिर टेंशन आता है पुरुषार्थ का, तो थोड़ा सा गेम के रूप में हमने इसे सभी के सामने रखा, जिस कारण बहुत इंटरेस्ट से कि मुझे आउट नहीं होना है, नो रन नहीं निकालना है, इस प्रकार से हर एक का ध्यान भी रहा और पुरुषार्थ भी होता गया। तो ये क्रोध का है, इसका सब्जेक्ट भी हम चेंज करके नया रूप से बना सकते हैं, चाहे व्यर्थ संकल्प का है, संतुष्टता है या और कोई भी बातें हैं उसके ऊपर भी हम बना सकते हैं। अभी ओम शांति।
सब संकल्पों को समेटते हुए प्रकाश के गर्भ में स्वयं को हल्के सितारे के रूप में महसूस करें। चांद सितारों से उस पार सफेद प्रकाश के वातावरण में संपूर्ण फरिश्ता अव्यक्त ब्रह्मा बाबा मेरे ही इंतजार में बैठा है। मैं भी बाबा को देखते ही स्वयं को फिक्रात से फारिग बेफिक्र बच्चा महसूस कर रहा हूं। नजर पड़ते ही सारे दिन का पैकेज बाबा को दे दिया और मैं
जैसे कि संपूर्ण विदेही बन गया। अब उसी विदेही की कॉन्शियसनेस में मैं फिर से साकार वतन में कर्म क्षेत्र पर खुद को देखूं चलो फिर से सूक्ष्म वतन मैं विदेही बच्चा बाबा की बाहों में समा गया निर्संकल्प स्थिति है मेरी आओ फिर से कर्म क्षेत्र फिर से उड़ चले बाबा की गोदी में समा जाए बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और मैं संपूर्ण विदेही स्थिति में हूं इसी नशे में फिर से साकार वतन में आई है इसी स्मृति के साथ अपनी कुर्सी से आप उठेंगे और जैसे कि अपने कमरे में जाते वक्त सूक्ष्म वतन की ओर आप प्रयाण कर रहे हैं उसी स्मृति में चलेंगे कोई साकारी दुनिया की आवाज नहीं बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे जैसे कि आप बाबा के समीप से समीप जा रहे हैं सामान उठाते हुए भी बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं ऐसे ही लग रहा है धरती पर होते हुए भी फर्श से परे अर्श की ओर मैं आत्मा चल रही हूं
बाबा के बिल्कुल समीप। छोटे बच्चे के रूप में पहुंच रहा हूं।